सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तो आज हम आठवां अध्याय शुरू करेंगे। आठवें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग और कुल मिला के इसमें 28 श्लोक हैं। कुल मिला के 28 श्लोक हैं। सातवें अध्याय में देखा जो सीमित फल पाने के लिए पूजा करते हैं वो भ्रांत हैं और उनकी मेधा अल्प मेधसा है, ऐसा भगवान ने कहा। जो सीमित फल मांगते हैं भगवान से उनकी मेधा उनकी बुद्धि छोटी है, अल्प मेधसा है। और बुद्धिमान कौन है? जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है वो बुद्धिमान है। तो कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त करें? तो इस अध्याय में बताया जाएगा कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें। ध्यान के द्वारा हम देखेंगे, कुछ विधियां उन्होंने बताई है भगवान ने, उन विधियों को हम देखेंगे। और फिर ये भी बताया है कि इस मार्ग में, इस अध्याय में दो मार्ग का उल्लेख किया गया है। एक उत्तरायण मार्ग है और एक दक्षिणायन मार्ग है। जो लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं वो वापस आते हैं। तो हमको ये दोनों मार्गों के बारे में भी जानना होगा। इस अध्याय में चार विषयों की चर्चा है, चार विषय आपको इसमें मिलेंगे। पहला विषय है ब्रह्म और जगत। आप जिसको चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप जगत चाहेंगे जगत मिलेगा, आप ब्रह्म को चाहेंगे भगवान कहते हैं आपको ब्रह्म भी मिलेगा। और ब्रह्म कर्म अध्यात्म आदि प्रश्न जो अर्जुन ने किए हैं उसका भी उत्तर है। ये आपको श्लोक नंबर 1 से 7 तक ये हैं, 1 से 7 तक। फिर 8 से 14 जो है ध्यान योग से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान विभिन्न उपासना बताएंगे वो है। फिर 15 से 22 श्लोक तक जो है ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त से परे है, परे है। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि ये जो दूसरा विषय और तीसरे विषय को हम मिला के भक्ति योग भी कह सकते हैं, भक्ति योग की चर्चा है यहाँ पर। और चौथा विषय जो है वो दो मार्ग की यहाँ पर चर्चा की गई है, एक कृष्ण मार्ग है एक शुक्ल मार्ग है। कृष्ण मार्ग वाले जाने वाले वापस आते हैं और शुक्ल मार्ग से जाने वाले वापस नहीं आते हैं। तो पहला विषय जो है ब्रह्म और जगत, आप जिसे चाहेंगे वो मिलेगा। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये जो ब्रह्मन है वो सारे विषयों को व्याप्त करता है, ऑल परवेडिंग है, चाहे वो क्षर वस्तुएं हो या जीव हो सब में व्याप्त है। आप जिसकी भी प्राप्ति जानना चाहेंगे जिसकी भी प्राप्ति चाहेंगे ब्रह्म की हो या जगत की हो वो मिलेगा। भगवान कहते हैं मन बुद्धि भगवान को समर्पित करके शरीर से कर्म करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मन और बुद्धि को समर्पण करके शरीर से भगवान के लिए कर्म करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति, बुद्धि से मन को नियंत्रण करके अपना ध्यान जगत से हटाकर ओम पर लगाओ, ऐसा भगवान इस चैप्टर में कहने जा रहे हैं, इस अध्याय में कहेंगे। ओम इति एक अक्षरम, उसके ऊपर ध्यान करो, निरंतर करने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म कैसा है? बोले व्यक्त और अव्यक्त से परे है, व्यक्त और अव्यक्त से परे है। हमारे भीतर हम जो है रोज रात को हम अव्यक्त स्थिति में चले जाते हैं, कॉजल स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पर हमारी वासना सुप्त रहती है। उन वासनाओं में से या उनमें से कुछ कर्म फलों का जो है परिपाक हो जाता है, और वो परिपाक हमको सवेरे जो है जगा देता है। आप सोना भी चाहेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको वो जगा देगा। क्यों? कि आज का जो कर्म फल आपको लेना है, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, वो उसके लिए आपको जागना होगा। और फिर सारा दिन हम सुख दुख भोग करके फिर शाम को फिर सो जाते हैं, फिर अव्यक्त स्थिति में चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ जो है वो समष्टि में होता है। ये तो व्यष्टि में हुआ, व्यष्टि का जो है हमें अच्छी तरह से इसका अनुभव होता है। समष्टि में भी ऐसा ही होता है। समष्टि में क्या है, ब्रह्मा की एक रात्रि है और ब्रह्मा जी का एक दिन है। जब दिन होता है ब्रह्मा जी का तो सारी सृष्टि व्यक्त हो जाती है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारी सृष्टि अव्यक्त हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती है, सृष्टि अव्यक्त हो जाती है। फिर जब ब्रह्मा जी दूसरे दिन जागते हैं फिर सृष्टि आ जाती है। उसके बाद में दो मार्गों की चर्चा की गई है, एक सूर्य मार्ग है और दूसरा जो है दक्षिणायन कृष्ण मार्ग है। तो सूर्य मार्ग से क्या होता है, आप उत्तरायण से ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मलोक में जाके आपने वहां पर कुछ भोग किया, सुख का अनुभव किया, उसके बाद में ब्रह्मा जी आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान देने के बाद आपकी मुक्ति। हमको ये जानना है कि केवल दो जगह ज्ञान हो सकता है, आपको याद रखना होगा, एक तो इस भूलोक पर और दूसरा ब्रह्मलोक पर, बीच में और कहीं नहीं होगा। और ब्रह्मलोक जाने के लिए काफी उपासना करनी पड़ती है, तब आप ब्रह्मलोक पहुंचेंगे। तो वो क्या है, वो क्रम मुक्ति हुई, क्रम मुक्ति, इन स्टेप्स मुक्ति। यहां से उपासना की, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में थोड़ा सुख का अनुभव किया, उसके बाद में जो है ब्रह्मा जी ने हमको ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद मुक्ति हो गई। और दूसरा एक कृष्ण मार्ग है जिसको पितृ मार्ग भी कहते हैं। यहाँ भी आप ऊपर जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, और सुख की अनुभूति के बाद में आपको फिर वापस आ जाना है। मगर सच्चा योगी कौन है? सच्चा योगी वो है जो ध्यान योग के द्वारा यानी सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, सद्यो मुक्ति। हमने आगे भी चर्चा की, एक सद्यो मुक्ति होता है, एक क्रम मुक्ति होता है। तो सद्यो मुक्ति जो है हमें यहां उपलब्ध है, हमको मिल सकती है सद्यो मुक्ति, मगर चॉइस जो है हमारी है। अब हम देखेंगे कि हमने सातवें अध्याय में देखा कि सात से बारह जो अध्याय हैं वो तत्पद की व्याख्या करते हैं, एक से छह जो अध्याय है वो त्वम पद की व्याख्या करते हैं। त्वम पद मतलब जीव, जीव की व्याख्या करते हैं, जीव को क्या करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे कर्म योग करना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब चर्चा है पहले अध्याय से छठे अध्याय तक है। सातवें से बारहवें अध्याय तक जो है वो तत्पद की चर्चा है, तत्पद की चर्चा है। तो सातवें अध्याय में हमने देखा भगवान अपने बारे में बताते हैं, भक्त के बारे में बताते हैं एवं भक्ति के बारे में बताते हैं। तीन विषय हम लोगों ने इसमें देखे हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। भक्त कौन है? भगवान ने वहां तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, जो नित्य युक्त है वो मेरा भक्त है, ज्ञानी भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बाकी और भक्त भी है, आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये भी भक्त हैं, मगर ये नित्य युक्त नहीं है। आर्थ जो होता है जब दुख उसका खत्म हो गया भगवान को भूल जाता है, अर्थार्थी जब हम पैसे मांगने गए भगवान से पैसे मिल गए फिर भगवान को भूल गए। तो नित्य युक्त नहीं है, मगर ज्ञानी कैसे हैं? ज्ञानी नित्य युक्त है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरा भक्त है। और भगवान कौन है? भगवान ने अपने बारे में कई जगह बताया है, आप भी अगर इसको पढ़ोगे तो और भी आपको कुछ मिल जाएंगे। भगवान ने कहा, मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव, मेरे से ऊपर और कोई ऊपर नहीं है। आप ये सोचोगे कि उनके ऊपर कौन है, उनका कौन नियामक है, कंट्रोलर है? भगवान कहते हैं मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। और मैं कैसे हूं? सब जगह जैसे मोतियों के अंदर सूता पिरोया हुआ है वैसे ही सारे जगत में मैं पुरोया हुआ हूँ, सब जगह अनसूयत हूँ। फिर भगवान ने यह भी कहा, मम माया दुरत्या मामे भी प्रतिदंते, मैं कौन हूँ देवी ऐसा गुणमया मम माया दुरत्या, ये माया जो है मेरी है मगर इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मेरे पास जो आता है मैं उसको पार करा देता हूँ संसार से। तो अगर हमको संसार पार करना है तो भगवान के पास जाना होगा, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान ने यह भी कहा, मैं जगत का प्रभव प्रलय स्थान हूँ, मेरे से ही जगत आता है और मेरे में ही प्रलय हो जाता है। और ये भी कहा, मैं हर जीव के बारे में उसका अतीत वर्तमान और भूत जानता भविष्य जानता हूँ, हर जीव के बारे में उनकी अतीत के बारे में जानते हैं भगवान, अभी के बारे में जानते हैं और भविष्य में क्या होगा ये भी भगवान जानते हैं। और फिर भगवान ने कहा, जो मुझे जान लेते हैं वो ब्रह्म को अध्यात्म को कर्म को अधिभूत को अधिदैव आदि सब चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पूरी तरह से उसको जान लेते हैं। और ये जानना आप जो है मृत्यु के समय भी हो सकता है, प्रयाण काले अपी ऐसा हो सकता है। भक्ति के बारे में क्या बताया, तो हमने भक्त के बारे में देखा, भगवान के बारे में देखा, भक्ति के बारे में भगवान का एक भक्ति विशिष्यते, जो एक भक्ति में निश्चित है, सिंगल पॉइंटेड जिसका डिवोशन है वो अच्छी भक्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और फिर भगवान ने ये भी कहा, जो नित्य युक्त है वो मेरे से बहुत प्रेम करता है और मैं भी उसको प्रेम करता हूँ, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। भगवान ने अपने बारे में भक्ति के बारे में और आठवें अध्याय में भी कहेंगे, इस अध्याय में भी हमको मिलेगा। तो ये अध्याय जो है अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है और ये प्रश्न का बीज कहाँ है, सातवें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में बीज है। 29वां श्लोक क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ते, जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहता है और भगवान से आश्रय में जाकर उनकी पूजा करता है यत्न करता है, ते ब्रह्म तद विदु, वो क्या जानता है, वो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म कौन है, कृष्णम अध्यात्मम, पूरा अध्यात्म किसको कहते हैं वो भी जान लेता है, कर्म च अखिलम, सारे कर्मों को जान लेता है, साधिभूत भूत आदिभूत क्या है उनको जान लेता है, अधिदैव क्या है वो भी जान लेता है, अधियज्ञ क्या है ये भी जान लेता है, प्रयाण काले पीछे मामते विद्युक्त चेत, और वो मृत्यु के समय भी मुझे पा सकता है, प्रयाण काले अभी ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें को मृत्यु के समय भी इसको भगवान को पा सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए ना, भगवान को मृत्यु के समय भी जान सकते हैं इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारी जो भी उम्र हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई अब नहीं होगा, किसी क्षण भी ऐसा हो सकता है। आठवें अध्याय अर्जुन के 7 प्रश्नों से शुरू होता है, भगवान इन शब्दों का उपयोग करके यह देखना चाहते हैं कि अर्जुन ठीक से समझा है कि नहीं समझा है, समझा है कि नहीं समझा है, ये तो देखना है। अगर नहीं समझा है तो भगवान फिर कहेंगे, फिर से बताएंगे, तो शिक्षक का तो ही काम है, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। अब हम देखते हैं पहला और दूसरा श्लोक जो है अर्जुन के प्रश्न है, इसको हम देखते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन युवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्, किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अर्जुन युवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं, किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते
अधियज्ञ कथं कोत्रम्,
अधियज्ञ कथम कोत्रम, अधियज्ञ कथम कोत्रम, कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथम, प्रयाणकाले च कथम, ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, अधियज्ञ कथम कोत्र, देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथम, ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः।
अर्जुन का क्वेश्चन नंबर वन, किम तत् ब्रह्म, किम तत् ब्रह्म। अब देखिए सातवें श्लोक, सातवें चैप्टर के 29वें श्लोक में भगवान के कहा ते ब्रह्म तद्विदु, ऐसा कहा भगवान ने। तो अर्जुन पूछता है कि वह ब्रह्म क्या है, क्या वह सगुण ब्रह्म है कि निर्गुण ब्रह्म है, सौपाधिक है कि निरुपाधिक है, सविशेष है कि निर्विशेष है। देखो ये डिफरेंट वर्ड है मगर मतलब एक ही है। क्या ये सगुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म की बात आप कर रहे हो, मेरे को बताओ। अच्छा, ओम इति ब्रह्म, इसी अध्याय में भगवान बोलने वाले हैं कि ओम इति ब्रह्म, 13वें श्लोक में जाके बोलेंगे कि ओम ब्रह्म है। तो क्या आप ओम को ब्रह्म कहना चाहते हो, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्राह्मण जाति को भी ब्रह्म कहते हैं। नॉट ओनली दैट, मम योनि महत ब्रह्म, भगवान ने यह भी कहा मेरी योनि प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, आप ब्रह्म का माने क्या है, ब्रह्म के इतने माने होते हैं, मेरे को जानना है आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो। अच्छा, किम अध्यात्मम, भगवान ने सातवें चैप्टर 7 के 29वें श्लोक में कहा कृष्णम अध्यात्मम, यानी संपूर्ण अध्यात्म को जान पाओगे। ये अध्यात्म क्या है, अधि प्लस आत्मा अध्यात्म, तो आत्मा के बारे में आप पूरा जान लोगे। तो ये अध्यात्म क्या है, कई जगह हमने आत्मा को देखा है, कार्यकरण संघात को भी आत्मा कह दिया है, आत्मा मैंने शरीर, कहीं पर आत्मा मैंने जीव कहा है, कहीं पर आत्मा मैंने शुद्ध चैतन्य भी कह दिया है, कहीं पर ऐसा कहा है कि आत्मा क्या है, पंच कोशातीत है वो आत्मा है। और कई जगह भगवान ने ऐसा भी कहा कि हमको तीन जगह से दुख मिलते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो भगवान आप अध्यात्म मैंने क्या कहते हैं बताओ, हमने इतनी चीजें देखी हैं अध्यात्म के अंदर में। अच्छा, किम कम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या है बताइए, क्या कर्म चेष्टा है, हम जो कर्म करते हैं उसमें एफर्ट डालते हैं, क्या उसको कर्म कहते हैं, या क्या विशेष कर्म है, ब्रह्म को जानने के लिए कोई विशेष कर्म करने के लिए आप कह रहे हैं, या क्या वो अपना स्वधर्म है, अपना स्वधर्म करना क्या कर्म है। अखिल कर्म जान लेते हैं, अखिल कर्म का मतलब क्या हुआ, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म, अकर्म विकर्म निषिद्ध संचित आगामी प्रारब्ध काम्य कर्म, सब भिन्न है, कौन से कर्म की आप बात कर रहे हैं, कौन से कर्म की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है और भी प्रश्न है, अधिभूतम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत के नाम से क्या कहा गया है, भूत क्या है, क्या तन्मात्रा को आप भूत कर रहे हो कि पंच महाभूत जो ग्रॉस हैं, स्थूल पंच महाभूत को आप भूत कर रहे हो, या इन तन्मात्रा पंच महाभूत के जो कार्य हैं, इनसे जो कुछ बने हैं उनको भूत कर रहे हो, या भूत प्रेत का जो भूत है उसको कह रहे हो, या कि प्राणी को कह रहे हो, प्राणी को कह रहे हो। देखो इतने संशय हैं, भूत मैंने क्या बताइए आप हमको। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैवम किसको कहते हैं, क्या आप देवता इंद्र आदि की बात कर रहे हो, या कि इस संसार में हम फिनोमिनल फोर्सेस देखते हैं, वायु है, जल है, सूर्य है, या देवता जो है हम अपने डेस्टिनी को भी कहते हैं, भाग्य को भी देवता कहते हैं। तो आप किस देवता की बात कर रहे हो, इसको भी थोड़ा आप खुलासा करो। अधियज्ञ कथम का अत्र देहे अस्मिन मधुसूदनम, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। देखो इसमें जो है छठवें श्लोक में दो प्रश्न है। अर्जुन ने कुल मिला के 7 प्रश्न किए थे, मगर छठवें के अंदर ए और बी है। तो ए क्या है, अधियज्ञ कौन है, बी क्या है, उसका स्थान कहां है शरीर में, कहां है ये, और उसका नाम अधियज्ञ क्यों पड़ा, ऐसा अर्जुन जानना चाहता है कि अधियज्ञ कौन है। प्रयाण काले च कथम गृहसी नियरात्म भी, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय किस प्रकार जानने में आते हैं, अंत में कैसे जाना जाता है ये भी हमें बताइए। नियत आत्म भी, नियत चित्त, समाहित चित्त, जिन्होंने अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगाया, वो नियत आत्म भी हैं। तो भगवान को मृत्यु के समय जानना बहुत कठिन है, क्योंकि मन इंद्रियां पूर्वी उसके नियंत्रण में नहीं होती। मृत्यु के समय हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती। क्यों नहीं वश में होती है, अरे वो तो लास्ट स्टेज ऑफ पैकिंग है, पैकिंग शुरू हो जाती है 40 साल से। जैसे हम 40 साल की उम्र होती है तब से स्टार्ट पैकिंग। अब मृत्यु के समय तो नियरली ऑल एवरीथिंग इज पैक्ड। तो मन इंद्रियां जो है उपलब्ध नहीं होती है, नियंत्रण में भी नहीं रहती हैं, पुरुष असहाय है उस समय में। कठिनाई ये है कि देखो एक तो मृत्यु को पता नहीं किस समय आएगी, मृत्यु क्या हमारे हाथ में है, आपको मालूम है कब आएगी मृत्यु, हमें नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है, और शरीर के ऊपर नियंत्रण भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। शरीर शिथिल हो गया, इंद्रिया भी शिथिल हो गई, मन के ऊपर नियंत्रण भी नहीं है, और उसको जानने के लिए जो सूक्ष्म अग्रया बुद्धि चाहिए वो भी नहीं है। आप मृत्यु के अंतिम क्षण की चिंता करो, तब आपको सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है ठीक से, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो उस समय कैसे हम जान पाएंगे, तो ये जो है भगवान के अर्जुन के 7 प्रश्न हैं, और अगर देखा जाए तो 8 प्रश्न है, छठवें में 2 प्रश्न हैं, कुल मिला के 8 हैं, और वैसे देखा जाए तो 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों के 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में खत्म कर देंगे। 7 प्रश्न जिसमें छठे प्रश्न के अंदर 2 भाग हैं, इनका उत्तर भगवान तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में कंप्लीट कर देंगे। और 7वां जो प्रश्न है उसका उत्तर वहाँ से शुरू होके 5वें श्लोक से शुरू होके इस अध्याय के अंत तक चलेगा। 5वें श्लोक से चलकर 28वें श्लोक तक 7वें प्रश्न का उत्तर है। अच्छा तो हम शुरू करें, प्रश्न आपको पता लग गया ना, अगले दिन मैं पूछूंगा क्या प्रश्न था, आपको बताना होगा। बहुत दिन आपने आनंद ले लिया है, खाली सुनते रहे हैं, सुनते रहे हैं, सुनते रहे। आशीष जी आप किसी को लिंक अभी मत भेजिएगा, ये लोग हमको बताएंगे उसके बाद इनको लिंक दीजिएगा, ठीक से इन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। प्रश्न जो है हमने देख लिया, अब उसका उत्तर देखते हैं। 3वां श्लोक,
श्री भगवानुवाच,
श्री भगवानुवाच,
अक्षरं ब्रह्म परमं,
अक्षरं ब्रह्म परमं,
स्वभावोध्यात्ममुच्यते,
स्वभावोध्यात्ममुच्यते,
भूतभावोद्भवकरः, भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः कर्म संहितः,
विसर्गः कर्म संहितः,
श्री भगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं, स्वभावोध्यात्मयुच्यते, भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः कर्म संहितं संहितः।
आप 6 प्रश्न लिखेंगे और जितनी हमने व्याख्या की है वो लिखेंगे, और 6 प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे। छह प्रश्नों का उत्तर अगर हम कंप्लीट कर पाए, चौथे श्लोक तक कंप्लीट कर पाए तो आप उसको लिखेंगे। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावम अध्यात्म उच्चते। तो ब्रह्म क्या है उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, परमम अक्षरम ब्रह्म, बस इतना ही, वन सेंटेंस, एक सेंटेंस भगवान ने कह दिया, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर के दो माने होते हैं, अक्षर के दो माने, एक है जो क्षर या नष्ट कभी नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता या क्षय नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। अब अप्लाई कीजिए, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, कौन सा क्षय होता है कौन सा क्षय नहीं होता है? निर्गुण ब्रह्म का क्षय नहीं होता है, सगुण ब्रह्म का क्षय होता है। तो निर्गुण ब्रह्म को अक्षर कहते हैं, अक्षर माने ओम भी, अक्षर को हम लेटर कहते हैं ना, ये अक्षर है, ओम भी एक अक्षर है। तो ओम में स्वर और वर्ण है, ओम के अंदर स्वर और वर्ण, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं, तो अकार उकार ये स्वर है और मकार वर्ण है, मकार वर्ण है, और ओम जिसको लक्षित करता है वो स्वर और वर्ण से अतीत है, इसलिए ओम अक्षर नहीं हुआ। आपने लॉजिक पकड़ लिया, ओम के अंदर आकार उकार एंड मकार है, आकार और उकार क्या है वो स्वर है, मकार क्या है वर्ण है, मगर ओम किसको लक्षित करता है, उस निर्गुण ब्रह्म को। तो वो निर्गुण ब्रह्म कौन है, वो स्वर और वर्ण से परे है, परे है। इसलिए यहां पर ओम शब्द लक्षित नहीं करता है, वो अक्षर जो है वो ओम को लक्षित नहीं करता है, वो अक्षर जो है ओम से परे है, परे है। अवतीति ओम, जो अविद्या को अंधकार से अपनी रक्षा करे उसका नाम ओम है, अखंडानंद महाराज ऐसा कहते हैं, जो अविद्या से हमारी रक्षा करे उसको ओम कहते हैं। मगर यहां क्या कहा, यहां कहा है अक्षर परमम कहा, देखो केवल अक्षर वर्ड नहीं यूज किया भगवान ने, अक्षर परमम कहा है। तो परम अक्षर कौन हुआ, तो ओम इति अक्षरम ब्रह्म वाक्य में वर्णित तो ओंकार का ग्रहण नहीं किया गया है, वो नहीं है परम, परम क्या हुआ निर्गुण ब्रह्म। तो आप युक्ति के साथ हमें बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, निर्गुण है कि सगुण है, ओम है क्या, ओम क्यों नहीं है, इतनी बात आप लिखेंगे और बताएंगे हमको कि ये ओम क्यों नहीं है। ठीक है, जो निरित से बृहत है, बृहत्वात् ब्रह्म, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से सीमित नहीं है, जो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, वह निर्गुण ब्रह्म परमम अक्षर ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है आपको समझ में आ गया, कौन सा ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है, ओम ओम भी ब्रह्म नहीं है, ओम जिसको लक्षित करता है वो ब्रह्म है। ठीक है, अध्यात्म क्या है, स्वभाव है अध्यात्म उच्चते, स्वभाव है अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म उसको कहते हैं जो शरीर के भीतर ही हो, अधि प्लस आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म, अधि आत्मा। अगर मेरे से कोई आके पूछे आपका निवास स्थान क्या है तो मैं कहूंगा अधि शिकागो, आपका निवास स्थान क्या है अधि शिकागो, अधि शिकागो शिकागो में है, शिकागो में है। अच्छा, तो ये परम ब्रह्म जो है वो कहां है, वो प्रत्येक के शरीर में आत्मभाव से है, प्रत्येक शरीर के अंदर आत्मभाव से भगवान हम लोग के साथ में है, उसका नाम स्वभाव है, वह स्वाभावी अध्यात्म कहलाता है, वह स्वाभावी अध्यात्म कहलाता है। जो हमारे भीतर आत्मा है वही स्वभाव कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, अक्षर का प्रत्येक आत्मभाव ही अध्यात्म है। अक्षर, अक्षर कौन हुआ? निर्गुण ब्रह्म, अभी हमने देखा है। अक्षर का प्रत्येक आत्मभाव, प्रत्येक मतलब इनसाइड, उस परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का जो हमारे भीतर में है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, अक्षर जो है वो तत्पद को लक्षित करता है और आत्मा त्वम पद को लक्षित करता है। देखो, तत्त्वमसि वाक् महावाक्य सुना है ना आपने, अक्षर किसको लक्षित करता है? तत्पद को, और आत्मा त्वम पद को। तो ब्रह्म और स्वभाव से भगवान ये इंगित करना चाहते हैं कि तत्त्वमसि महावाक्य में जो जाना चाहता है जीव ब्रह्म का ऐक्य, वो जो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है वही आत्मा के रूप में मेरे अंदर है, उसी को भगवान ने स्वभाव कहा, उसी को स्वभाव कहा। वेद में कैसे इसको कहते हैं, वेद में इस अध्यात्म को कैसे कहा? यो वेद निहितम गुहायाम तत् सृष्टवा तत् अनुप्राविशत। अनुप्राविशत कई बार आपने सुना है, ये प्रवेश होती है, भगवान ने सृष्टि की और उसमें घुस गए। जब हम कैवल्य उपनिषद पढ़ रहे थे, हमने कई प्रवेश होती आपको बताई थी, एक प्रवेश होती ये भी है कि भगवान घुस गए। तो हमारे भीतर कैसे घुसे हैं? आत्मा के रूप में घुस गए हैं, हमारे भीतर हैं। तो जो अक्षर निर्गुण ब्रह्म है वही हमारे शरीर में आत्मा के रूप में है, जो तत् है वही त्वम है। इससे तत् और त्वम की एकता सिद्धि होती है। अच्छा, अब कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न था, कर्म क्या है? भगवान उसका उत्तर देते हैं, भूत भवोद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से कहा गया है। त्याग कर्म है, विसर्ग कर्म है। अच्छा, तो करने का नाम कर्म नहीं है, विसर्ग का नाम कर्म है। विसर्ग माने त्याग, विसर्ग माने त्याग। त्याग को कर्म यहां कहा। उद्भव माने वृद्धि, उद्भव माने वृद्धि। त्याग से भूत भाव की वृद्धि होती है, हम जितना त्याग करेंगे उतनी हमारी वृद्धि होगी। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको तो लगता था जितना हम एक्यूमुलेट करेंगे उतनी वृद्धि होगी। ऐसे ही हम जानते हैं ना, जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा उतनी वृद्धि होगी ना, भगवान तो कुछ उल्टे ही बता रहे हैं। जितना आप त्याग करोगे उतनी आपकी वृद्धि होगी। अच्छा अच्छा, त्याग से जो है भूत जो है पुष्ट होते हैं, जितने भी जीव हैं उनकी पुष्टि होती है। कैसे? अभी हम आठवें अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान कहा था, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम्। हम जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, हम देवता को आहुति देते हैं, देवता को आहुति देते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो अन्न होता है, जब अन्न होता है तब जीव की वृद्धि होती है, जीव पुष्ट होता है। शुरू कहां से हुआ? यज्ञ से। यज्ञ में आपने क्या किया? यज्ञ में मैंने त्याग किया। क्या त्याग किया? वो जो हम ऑब्लेशन देते हैं ना, आहुति देते हैं, वो त्याग है। हम उसको कहते हैं ये भगवान आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हमने त्याग किया, उस त्याग से क्या हुआ? भगवान खुश हुए। भगवान खुश हुए तो उन्होंने क्या दिया? बारिश दे दी। बारिश दे दी तो अन्न हुआ, अन्न हुआ तो फिर जीव की पुष्टि हुई। त्याग जो है वो जीवों को पुष्ट करता है। तो यज्ञ याग क्या हुआ, ये विसर्ग, देखो सब मिला के यज्ञ याग विसर्ग है। अच्छा तो यज्ञ याग विसर्ग है तो क्या फिर कल से हम लोग यज्ञ याग शुरू करें क्या? यज्ञ याग तो अब तो संभव नहीं है। यज्ञ याग तो कर्म के द्वारा हमको त्याग करना है, वही यज्ञ है। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही यज्ञ है। तो हम जितना जितना हम त्याग करेंगे, दान देंगे, सेवा करेंगे, भगवान कहते हैं उतनी उतनी आत्मा परमात्मा की उपलब्धि होती जाएगी, हमारी वृद्धि होगी ना। देखो इसके पीछे विज्ञान बहुत सीधा है, जितना जितना आप भगवान के लिए करोगे उतनी उतनी वासना आपकी कमती होती जाएगी, जितना जितना आप अपने लिए करोगे उतनी उतनी वासना बढ़ती जाएगी। इतना तो आप लोग को अब 6 साल में जरूर समझ में आ गया होगा। जितनी काम हम अपने लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, उतनी वासना वृद्धि होगी। जितना काम हम दूसरों के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, उतनी उतनी वासना कमती होती जाएगी। जितनी वासना कमती होती जाएगी उतना उतना आपको भगवान की उपलब्धि की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, उतना उतना बढ़ते जाएंगे। देखो त्याग दान सेवा हविष से मन से मल की शुद्धि होती है। कर्म ऐसा हो जिससे मन को शुद्ध हो, हमारा एक काम तो यही है ना, पहले मन को शुद्ध करना है। तो कैसे शुद्ध होगा? त्याग से शुद्ध होगा, विसर्ग से शुद्ध होगा, यज्ञ याग से शुद्ध होगा, कर्म योग से शुद्ध होगा। मन को शुद्ध पहले करना है। जो त्याग रूपी कर्म करता है उसे साधना का रहस्य पता लग गया। अगर हम अपने को ही भगवान को समर्पण कर दे, देखो और बड़ी बात, एक तो हुआ कर्म करते हैं, कर्म के बदले अपने को ही समर्पण कर दो, मैं दास हूं आपका, खत्म हो गया, झंझट ही खत्म, समर्पण ही नहीं करना है। आप तो भगवान की खुशी के लिए काम करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। भगवान जिसमें खुश होंगे वही करेंगे। तो ऐसा करने से तत्पद और त्वम पद का पता चल जाएगा, साधना का फल मुक्ति मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और दिखाना है, क्योंकि भूल जाएंगे, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है आप भूल जाओगे। चौथा सूत्र,
अधिभूतं क्षरो भावः,
अधिभूतं क्षरो भावः,
पुरुषश्चाधिदैवतम्,
पुरुषश्चाधिदैवतम्,
अधियज्ञोऽहमेवात्र,
अधियज्ञोऽहमेवात्र,
देहे देहवृताम्बर,
देहे देहवृताम्बर,
अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञोऽहमेवात्र, देहे देहभृताम्बर।
अधिभूतं च किं प्रोक्तं, ये प्रश्न था अर्जुन का, प्रश्न था अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। तो भगवान उत्तर देते हैं, अधिभूतं क्षरभावः, क्षरभावः। तो एक अभी हमने आगे एक शब्द देखा अक्षर, किसके बारे में कहा था, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा था, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता। अब भगवान क्या कहते हैं कि जितने भी भूत जो हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, ये सब क्षर है। हम लोग कैसे हैं, क्षर हैं, विनाशी हैं। जितने भी जीव हैं वो क्षर हैं और निर्गुण ब्रह्म अक्षर है। तो क्षर का मतलब जिसका स्वभाव क्षर यानी विनाशी है। हमारा शरीर, कार्य कारण संघात, ये भी विनाशी है, यानी कि सारी अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति। भगवान ने आगे कहा था ना कि मेरी दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अष्टधा, याद है आपको अष्टधा, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा। तो ये अष्टधा जो प्रकृति है ये सारी क्षर है, विनाशशील है, विकारी है, जिसको हम लोगों ने वेदांत में हम कहते हैं यत्र, हम जो भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब क्या है? ये सारा का सारा जो है वो सब जड़ है। यद दिश्रम तद जड़म, तद विकारी तद विनाशी तद मिथ्या तद असत, ऐसा हम लोगों ने वेदांत में देखा है। अच्छा, तो जो नित्य युक्त होकर मेरी खोज करता है, भगवान ने बताया ना ज्ञानी कौन है, नित्य युक्त है। जो नित्य युक्त होकर भगवान की खोज करता है वो भगवान को पा लेता है, भगवान को पा लेता है। और जो क्षर की खोज करता है, जो क्षर की प्रार्थना करता है, उसको क्षर मिट जाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाके, ये दे दो वो दे दो, तब हम सोचते नहीं हमने क्या मांगा भगवान से। अब विचार करके देखना, जिंदगी में जितनी बार भगवान से आपने मांगा है वो आपने अक्षर मांगा। कभी नहीं मांगा आपने अक्षर, आपने क्षर ही मांगा है। अच्छा, पांचवा प्रश्न, अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहते हैं, अधिदैव किसको कहते हैं? तो पुरुषते अधिदैवतम, पुरुष जो है अधिदैवतम कहा गया है। पुरुष कौन है, पुरुष कौन है? शंकराचार्य जी तीन डिफिनेशन देते हैं पुरुष की। पूर्ण मनेन सर्वमिति, जो पूर्ण है वो पुरुष है। पूर्ण कौन है? एक ही वस्तु पूर्ण है। हम करते रहते हैं पूर्णादय पूर्णिदम पूर्णात्पूर्णमिदम, पूर्ण एक वस्तु है, इनफाइनाइट जो है। दूसरी डिफिनेशन शंकराचार्य के, पूरी सैनाथ, जो पूरी, पूरी मतलब सिटी, जगन्नाथपुरी। तो भगवान कहते हैं ये देह भी जो है ना एक पूरी है, इसके 9 गेट्स हैं, नवद्वारे पूरे देही, ऐसा भगवान कहेंगे। इसके अंदर जो शयन करता है, जो रहता है, वो पुरुष है। और तीसरा जो है हिरण्यगर्भ, जो है शंकराचार्य जी कहते हैं हिरण्यगर्भ सर्व प्राणी कारणाम अनुग्राहक से अधिदैवतम। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, उसे शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। इन सब शब्दों से आप परिचित हैं, हिरण्यगर्भ क्या है, उसी को सूत्र आत्मा भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मा जी भी कहते हैं, या प्रजापति भी आपको मिलेगा, तो वो प्रजापति है। तो ये ब्रह्मा जी हैं कौन? तो ये ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ प्रथम पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, उनके पहले कोई पुरुष नहीं है, ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष हैं। और वह सर्वभूत अधिकारी हैं, उनके अंडर में ही सारे भूत हैं, और वे सारे देवताओं के भी नियंता हैं सारे देवताओं। क्यों? उनके बाद सब देवता है, उन्होंने बनाया देवताओं को। तो आदित्य आदि देवतानी अधिष्ठाय, देवता समष्टि को नियंत्रण करते हैं और देवता व्यष्टि को भी नियंत्रण करते हैं। तो समष्टि देवता भी है, जैसे सूर्य देवता है, और व्यष्टि के अंदर वही सूर्य देवता हमारे नेत्रों का भी देवता है। मन का देवता चंद्र है, हाथ का देवता इंद्र है, पांव के देवता विष्णु है। इस तरह से देवता जो है हमारे व्यष्टि में भी हैं और समष्टि में भी हैं। तो देवता अनेक हैं, सूर्य चंद्र वायु ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। देखो ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो जितने ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सब एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु हैं और एक महेश हैं। और हम जिस ब्रह्मांड में हैं वो सब ब्रह्मांडों से सबसे छोटा है। हमारे ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, दूसरे ब्रह्मांडों में उनके मुख और है, क्योंकि बड़ा ब्रह्मांड है, इससे ये सबसे छोटा है। केवल चतुर्मुखी ब्रह्मा है यहाँ, दूसरे ब्रह्मांड में जो और बड़े बड़े हैं ब्रह्मा जी हैं। सो इन सब का आदि पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष? वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। सबसे पहले कौन आए सृष्टि में? पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, वही आदि पुरुष हैं और वही विराट पुरुष हैं। उनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म अभिव्यक्ति का स्थान है और अव्यक्त से व्यक्त की प्रथम सूक्ष्म व्यक्ति है, वही पुरुष है। अव्यक्त से प्रथम व्यक्त, कौन बताएगा? महातत्व सुना है आपने, हिरण्यगर्भ। क्या फर्क है उसमें महातत्व और हिरण्यगर्भ में? जिसको महातत्व कहते हैं उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, वही हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा है, वही हिरण्यगर्भ को हम ब्रह्मा जी भी कहते हैं, एक ही चीज है। तो पहली अभिव्यक्ति अव्यक्त से जो व्यक्त हुई वो हिरण्यगर्भ है, उसको महातत्व कहते हैं। जड़ता की दृष्टि से उसको महत्व तत्व कहते हैं और चेतन से उपहित हो जाने से उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। आप लिख के रखिएगा, हमें बताइएगा कि महत्त्व और हिरण्यगर्भ में फर्क क्या है। बहुत बार कहा है, आपको याद रखना होगा। सब है शरीर प्रथमा, सब है पुरुष उच्चते, किसको पुरुष कहते हैं? आदिकर्ता सब भूताना ब्रह्माग्रे समवर्तते, ब्रह्मा जी। तो हिरण्यगर्भ इज अधिदैव, तो अधिदैव का मतलब क्या हुआ? इतना डिस्कशन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिरण्यगर्भ जो है वो देवता हुए, अधिदैव। अधियज्ञ कथम का अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन, हे मधुसूदन यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दो प्रश्न थे छठवें प्रश्न में, पांच प्रश्न हमने देख लिए छठे प्रश्न का, तो आपने लिखने हैं छह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मैं छठवां प्रश्न खत्म कर दूंगा आज,
नेक्स्ट क्लास में कोई भी नहीं आएगा।
तो भगवान कहते अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहवृतांबरा, देहवृतांबरा में अर्जुन, हे अर्जुन, हे देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। भगवान कहते हैं मैं ही अधियज्ञ हूं इस देह में, मैं ही इस देह के अंदर अधियज्ञ हूं। इस देह में भगवान आप कहां हैं? कहां हैं आप? मैं सब शरीर में अंतर्यामी रूप से उपस्थित हूं। अंतर्यामी की अपनी आवाज है जो हमें सदा गाइड करती है। देखो अंतर्यामी की आवाज आपको कई बार मिलती है, आप गलत काम करने जाते हो, भीतर से एक आवाज आती है, क्यों कर रहे हो ये तो गलत काम है, नहीं करना चाहिए। जब जब हम नहीं सुनते हैं उस आवाज को तब तक हम दुखी होते हैं। आप देखना, जब जब हम अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हैं तब तक हम दुखी होते हैं। ये अंतरात्मा क्या है? वही लाइफ स्पार्क जो हमारे में है, वही है। तो वो भगवान मैं हूं, वह अंतर्यामी भगवान अधियज्ञ है। इस देह में रहकर वो क्या करता है? वो हमें सही सलाह देता है, और जब हम सलाह को मान लेते हैं तो हम सुखी होते हैं, जब सलाह को नहीं मानते हैं तो दुखी होते हैं। आपने कभी अनुभव किया अंतरात्मा की आवाज? गलत काम करने जाते हो तो अंतरात्मा से एक आवाज है, तैयारी मत करो, ऐसा करना गलत काम है। अब भगवान हमारे अंतरात्मा रूप में बैठे हैं कि नहीं, ऐसा भगवान देखो आगे भी कहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। भगवान ऐसा कहते हैं, मैं हूं सबके भीतर। तो समरी क्या हुआ? अधियज्ञ मैं हूं, मैं इस शरीर में उपस्थित हूं। उपस्थित होकर क्या करते हैं आप? अंतर्यामी यमति, यमति मतलब जो नियंत्रण करता है, वो अंतर्यामी रूप से मैं अधियज्ञ हूं। यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु हमारे हृदय में है। भगवान विष्णु हमारे हृदय में। तो यज्ञ क्या हुआ? बोले ये डिवाइन कर्म है, दिव्य कर्म है। जो ठीक है वो यज्ञ है, जो हमसे यज्ञ करवाता है वो अधियज्ञ है, जो हमसे यज्ञ करवाता है वही अधियज्ञ है। अधियज्ञ भगवान भीतर से हमें बताते हैं कि यह ठीक है या गलत है। हम जब उनकी सुनते हैं तो हम सुखी होते हैं, नहीं सुनते हैं दुखी होते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उसके हिसाब से चलो, ये भगवान का निर्देश है। प्रयाण काले च कथम किए असी नियान आत्म भी, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंतकाल समय में आप किस प्रकार से जाने जाते हैं ये सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि अंत काल में आप कैसे जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर भगवान पांचवें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक देंगे। तो सात प्रश्नों के अंदर 6 प्रश्न क्या हैं, उनके क्या उत्तर हैं, वो आप लिख के रखिएगा और जरूर आइएगा क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो भारी हो जाएगा। और चल ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः।